चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायन विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय माम च। यहाँ पर श्री विष्णु मंदिर में हम लोगों का तृतीय दिवस है और फिजी में आए हुए हमें करीब करीब लगभग 10 दिन हो गए। आज 10वां दिन है। लोग बड़ी उत्कंठा के साथ में सुन रहे हैं, इसलिए मैं सबको विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भागवत से कुछ भगवान के लीलाओं का, मधुर लीलाओं का प्रवचन कर रहे थे, किंतु आज हम कुछ विशेष सनातन धर्म के संबंध में बतलाकर तो फिर उनकी विशेष लीलाओं का हम प्रवचन करेंगे। आजकल सारे विश्व में, हमारे भारत में भी, भारत के से बाहर के देशों में भी हमारे सुप्राचीन वैज्ञानिक आधार पर प्रतिष्ठित श्री सनातन धर्म का विरोध हो रहा है। चारों तरफ से लोग हमारी इस भारतीय संस्कृति, ज्ञानों का भंडार वेद, उपनिषद, पुराणों पर, सनातन धर्म पर आक्रमण कर रहे हैं। कहते हैं ये तो एक माइथोलॉजी है, स्त्रियों का रसोई घर का एक कहानी मात्र है, इसमें कुछ सार नहीं है। दूसरी बात, अरे भाई ब्रह्मा भगवान का कोई आकार नहीं है, इसलिए मूर्ति पूजा भी ढोंग है। क्या पत्थर की मूर्ति अथवा किसी धातु के से बनी हुई मूर्ति भगवान हो सकती है, और उस पूजा का क्या कोई फल होगा? वेदों में कहीं भगवान का, कृष्ण का कोई नाम नहीं है। राम कृष्ण एक साधारण महापुरुष थे या पुरुष थे, व्यक्ति थे, भगवान नहीं। वेदों में जो बातें लिखी हुई हैं उसका कोई मूल्य आधार नहीं है। इस तरह से तरह तरह के आक्षेप आ रहे हैं। अब तो कुछ कम सुनने में आ रहा है। कुछ दिन पहले सर्वत्र ऐसे ही आक्षेप सनातन धर्म के प्रति आ रहे थे। किंतु हमारे प्रौढ़ विद्वानों ने, शास्त्र के वेत्ताओं ने प्रबल युक्ति और प्रमाण के आधार पर उनके विचारों का खंडन विखंडन किया। उन लोगों में से हमारे भक्ति वेदांत स्वामी जी, जिसको आप लोग प्रभुपाद के रूप में ही जानते हैं, वो भी आज से कुछ दिन पहले आए और सारे विश्व में सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। उन लोगों के इन प्रश्नों का उत्तर दिया जो हमारे शास्त्रों में इसके उत्तर दिए गए हैं, इसलिए आप लोग कभी भी विचलित नहीं होंगे। ये हमारा जो सनातन धर्म है, युक्तियों पर और वैज्ञानिक सत्य तथ्यों पर निर्भर है। इसका एक कोई अक्षर भी झूठा नहीं है, इस चीज को समझेंगे। ऐसा कहने वाले लोग न तो उसका कभी पालन किया, न कोई उसकी अनुभूति की, इसलिए उनकी धारणाएं भूल हैं। बहुत दिन पहले कोई पाश्चात्य देश के स्कॉलर मैक्स मूलर, आप लोगों का नाम जानते होंगे, कुछ थोड़ी सी संस्कृत वाराणसी में पढ़ी और पढ़ करके भारतवर्ष को संसार में नीचा दिखलाने के लिए उसका गलत अर्थ किया, जो आजकल स्कूल कॉलेजों में, विशेष करके विदेश के कॉलेजों में पढ़ाई जाती है। लोग, विशेष करके पाश्चात्य लोग, भारत के विषय में टेलीविजनों में या प्रचारों में, अखबारों में भारत की केवल गरीबी दिखलाते हैं, भारत के लोग भी खमंगे हैं ये दिखलाते हैं, भारत की सब चीजें बेकार की है, वहां पर लोग नंगे और भूखे केवल डोलते हैं, और गजड़ी भगड़ी साधु झूठ मूठ वाले के पंजे में रहते हैं, उनकी बात मानते हैं, इनमें वैज्ञानिक उन्नति नहीं है, अच्छे विचार नहीं, ये इसलिए दिखलाते हैं कि पाश्चात्यों की दृष्टि में भारत कुछ गिर जाए, जिससे कि वो गुलाम रखा जा सके और उसकी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट करके हम अपनी संस्कृति मुंझे रख करके अपने जैसा बर्बाद कर दें। भारत की संस्कृति महान है, भारत महान है, इसका पहले भी ये महान था, आज भी उसी तरह से महान है, नहीं तो हम जैसे लोग विश्व में जाते हैं, सर्वत्र वहां के देशी विदेशी सभी लोग हम लोगों का आदर करते हैं, हमारी बातों को सुनते हैं, यदि इसमें तथ्य नहीं रहता तो आज सारे विश्व के लोग पुनः भारत की संस्कृति को ग्रहण करने क्यों जा रहे हैं? वो लोग आज समझ रहे हैं धन से ही शांति और सुख नहीं खरीदा जा सकता। रशिया इस चीज को समझा, ये लोग भी जो सबसे समृद्ध देश अमेरिका है, ये भी इसको समझ रहा है, क्राइम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, धन से ये चीजें सुख और शांति नहीं मिलता। हमारे संस्कृति में इसको पहले ही देखा जा चुका है, मैंने कल परसों मैंने इसके संबंध में भी लिखा है। पहला आक्षेप करते हैं कि भगवान का रूप नहीं है, कल हमने कुछ कुछ बतलाया था, यदि भगवान का रूप नहीं है तो बाइबल ने ये क्यों लिख दिया गॉड क्रिएटेड मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, गॉड ने अपने रूप के समान में मनुष्यों को बनाया, ये क्यों लिखा, पहले उसको काटो, उसको मत मानो, गिरजाघरों की बनाने की कोई जरूरत नहीं है, आकाश में खुले रहो, और तुम्हारी भी मूर्ति आई कहां से, आई कहां से, यदि भगवान का रूप नहीं है तो तुम्हारा रूप आया कहां से, तुम कैसे आए, लाखों जो रूप हुए अजय जीरो से हुआ, जीरो से आजकल कोई मनुष्य के बाद में और कोई और उन्नत जोनी क्यों नहीं हो जाती, जो पहले हमने देखा, आज नई नई कोई चीज क्यों नहीं पैदा होती। इसलिए हमारे वेद की सभी चीजें परम सत्य हैं, इससे बढ़कर के कोई सत्य नहीं। इसलिए भगवान का रूप है, हम देखते हैं कि कटहल से ही कटहल पैदा होता है, आम से आम पैदा होता है, इमली से इमली पैदा होती है, गाय से गाय ही पैदा होती है, पुरुषों से मनुष्य ही पैदा होते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए भगवान का यदि रूप नहीं रहता तो ये कहां से इतनी प्रजाएं और इतने लोगों का इतना रूप होता है। इसलिए यह थ्योरी गलत है, आधुनिक प्राय समस्त थ्योरियां गलत है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी ऐसा लिखा, सत्यो सम इदम अग्रासी, ये जगत का सृजन करने वाला है उसका रूप है परम सुंदर रूप, वो कैसा है? द्विज श्याम सुंदर मुरलीधर, जो समस्त जगत को आकर्षित कर सकता है, उसमें समस्त गुण है, वो समस्त गुणों का आधार है, परम दयालु है। यदि वो रूप ही नहीं धारण कर सकता, दूसरों पर दया नहीं कर सकता, तो भगवान मानने की जरूरत क्या है? उसकी इबादत चर्चों में या उसमें मुसलमानों के मस्जिदों में या ऐसे ही करने की जरूरत क्या है? उसकी प्रार्थना तो सुनेंगे, उसका कान ही नहीं है, उसकी आंख ही नहीं देख सकता। इसे लिखा है हमारे वेदों में, भगवान की मूर्ति है, ओम विष्णु सदा पश्यन्ति सूर्य देवी चक्षु रात। पश्यन्ति माने देखता, देखना होता है। मुक्त पुरुष लोग ज्ञान की परिपक्व अवस्था में, भक्ति की परिपक्व अवस्था में विष्णु ये जो है इनका रूप दर्शन करते हैं और वही रूप यहां पर प्रकाशित करते हैं। दर्शन किस चीज का होता है? जिसका रूप ही नहीं तो उसको देखेगा क्या? इसलिए वेद में नहीं है ये भगवान की मूर्ति है। और ही भगवान के संबंध में बतलाया गया है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, शास्त्रों में, सर्वत्र ही भरे पड़े हैं। कुरान में, बाइबल में भी ये सब लिखे हैं, बाइबल कुरान में भी ऐसा लिखा है, इन्ना अल्लाह खलाका मैन सूरत ही, अपने सूरत के अनुसार में खुदा तल्ला ने ये रूप मनुष्यों को बनाया। इसलिए समस्त लोग ऐसा ही, हमारे प्राचीन संस्कृति ऐसी ही करती है और हम देखते हैं विचार करके, जिस चीज का रूप नहीं है उससे कोई चीज पैदा नहीं हो सकता, तो भगवान में ये रूप नहीं रहने से पैदा कैसे हो सकता है? ये सब ये संसार को कंट्रोल कौन कर रहा है? सूर्य नियमित समय पर उगता है, समुद्र में ज्वार भाटा समय पर आता है, मैया के स्तन में दूध किसने दिया, बुद्धि का किसने विकास किया, ये बुद्धि कौन दी? कोई है ही नहीं है कंट्रोलर। इसलिए ये सब चीजें हैं। कोई कहते हैं भगवान का, कृष्ण का नाम तो वेदों में नहीं है। अरे मूर्खों, पढ़ा तो नहीं संस्कृत इत्यादि वेद उपनिषद, वेद देखा है नहीं तो फिर कैसे समझ लिया ये वेदों में कृष्ण का नाम? हम तो देखते हैं कि वेद में ऐसा कोई वेद ही नहीं जिसमें कृष्ण का नाम नहीं है। देखिए तो वेदों में कैसा लिखा, स्वस्ति नो गोविंद, गोविंद किसका नाम है? स्वस्ति नो अच्युतानंदो, अच्युत कृष्ण का नाम अच्युत। स्वस्ति नो वासुदेव, वसुदेव से जो प्रकट हुए ये वासुदेव, ये वेद में नहीं है, ये ऋग्वेद में बतला रहा हूं। श्री कृष्ण सच्चिदानंद घन परम तत्व, ये सब तो उसमें लिखा है। सबला श्यामम प्रपद्ये, श्यामा सबलम प्रपद्ये, श्याम किसका नाम है कौन नहीं जानता? मुरलीधर श्याम सुंदर का नाम क्यों नहीं जानता है? वेद में यही नहीं है। अभी वेद ले हम उनको दिखला देंगे जो वेद में है। इसलिए यहां तक कि कृष्णाय वासुदेवाय तन्नो देवा प्रचोदयात, वासुदेव का स्पष्ट रूप में उल्लेख है। अपश्यक गोप मणि, गोपों में मणि कौन है? गोपों में सबसे श्रेष्ठ ये कृष्ण गोपाल हैं। भूरी सिंगा, जिनकी लंबी लंबी बहुत बहुत स्तन वाली जो गायें हैं नंद गोकुल में रहती हैं, गोकुल शब्द का उल्लेख है, झूठ मूठ लोगों को मूर्ख बनाने के लिए ऐसी सब बातें करते हैं, कहते हैं कि मूर्ति पूजा भी वेद में नहीं है। अरे वेद में नहीं है, जरा देखो तो इसमें है कि नहीं। अर्चत प्रार्चत प्रिय मेधासो अर्चत, ये वेद का मंत्र मैं बतला रहा हूं। अर्चत माने अर्चन करो, पूजन करो, प्रार्चत विशेष रूप से अर्चन करो, प्रिय मेधासो अर्चत, जिनकी बुद्धि मेधा शक्ति बहुत उन्नत है वो लोग भगवान की पूजा करते हैं, शिव विग्रह की पूजा करते हैं। कैसे नहीं है, इसलिए आप लोग मत समझेंगे ये ढोंग है मूर्ति पूजा। जो लोग भगवान को उपासना प्रणाम नहीं करते उनका जीवन सुखमय कदापि हो ही नहीं सकता है, वो शांति से नहीं रह सकता। वही लोग बीष पान करते हैं, आत्महत्या करते हैं, और वही देश सबसे दुखी है। आज भारत के लोग कुछ पाश्चात्य देशों के लोगों का अनुकरण करने के कारण दुखी है, नहीं तो धन चाहते ही थे। विदुर इतने धनी होते धन का त्याग कर दिया। हमारे जितने लोग हैं, सुखदेव गोस्वामी जी बड़े धनी पिता के पुत्र थे, वो नंगे रहते हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं, वैभव को त्याग कर देंगे, वैभव में ही दुख है। हम लोगों ने संसार छोड़ा अपना धन के लिए नहीं, इस दिव्य ज्ञान के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए, जिसमें हम लोग सुखी रह सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु अभी कुछ दिन पहले अपने प्रिय सुंदरी भार्या को छोड़ करके भगवत चिंतन करने के लिए चले गए, लोगों को शिक्षा देने के लिए। इसलिए हमारे ऋषियों ने महर्षियों ने यह उपलब्धि की, जहां अधिक अर्थ रहेगा वहां पर अनर्थ होगा ही, वहां पर आत्मचिंतन नहीं होगा। जो उच्च कुल में जन्मे हैं, जो परम सुंदर हैं, जागतिक विद्या जिनको है, जिनको अर्थ है अधिक, वो भगवान का भजन नहीं करते, उनको समय नहीं है। इसलिए मध्यम श्रेणी के लोग खाने पीने की भी कमी नहीं, अधिक पैसा भी नहीं है, ये लोग भगवान की कथा सुन करके भगवान की तरफ मुड़ते हैं, इसलिए जानबूझ करके छोड़ देते हैं। इसलिए भारतवासी जो संत लोग हैं कभी भी धन के लिए प्रयास नहीं किया, वो तो पूर्व जन्मों के कर्मों से अपने आप आएगा ही, कोई रोक नहीं सकता। इसलिए वो निश्चिंत होकर के परमार्थ करते हैं, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ है, इसलिए धन के लिए प्रयत्न ही नहीं किया, जो कुछ था वो बल्कि दे दिया। इसलिए इस चीज को समझें। एक समय में याज्ञवल्क ऋषि थे, उनकी दो स्त्रियां थी, एक कात्यायनी और एक मैत्रेयी। जब ये 50 वर्ष से ऊपर चले गए, उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, प्रियतमे मैंने जो कुछ कमाया वो आप लोगों को दे रहा हूं, लाखों कोटि गायें, दो दो पुत्र तुम लोगों को दे रहा हूं, ये कुटी भी भजन की या अट्टालिका तुम्हें दे रहा हूं, महल मैं तुम्हें दे रहा हूं, हमको दक्षिणा में जो कुछ स्वर्ण मिला था वो सब तुमको दे रहा हूं, अब तुम लोग घर में बच्चों के साथ में रहो और हमें यह आदेश दो कि आप जाकर के भजन कीजिए भगवान का। उसमें मैत्रेय जी ने कहा, ठीक है, आपने कर्तव्य पूरा किया है, आप भजन करने के लिए जा सकते हैं और खूब खुशी के साथ में जा सकते हैं, किंतु दूसरी स्त्री ने उनको कहा, मैं एक केवल प्रश्न पूछना चाहती हूं, प्रश्न का उत्तर देकर के उचित और आप जा सकते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न ये, आप जो हमें घर द्वार लड़के और संपत्ति जो दे करके जा रहे हैं, क्या इससे मैं सुखी हो सकूंगी? यदि यही सुख का कारण होता तो आप इनको छोड़कर के क्यों जाने चले जा रहे हैं, आप क्यों जा रहे हैं? इसका उत्तर दीजिए। आप इससे लेकर के सुखी रहिए, हमको क्यों सुखी बना करके रखना चाहते। बड़े खुश हुए, कहे तुम हमारी सचमुच में धर्म पत्नी है, हमारी अर्धांगिनी है, तुम्हारे जैसे स्त्री को पाकर के मैं बहुत खुश हूं, कृतार्थ हो गया। देखिए आपने, हमने तुमको जो अर्थ दिया, इससे कोई भी नहीं सुखी रह सकता जब तक कि आत्मज्ञान परमात्मा ज्ञान ना हो और भगवान के प्रति भक्ति ना हो, कभी हो ही नहीं सकता। जितना भी धनी आदमी रहेगा वो बुरी तरह से और मरते हैं उसके में आसक्त होकर के। उन्होंने बतलाया, देखो बेटी, देखो प्रिय, आदमी गाय पालता है, बड़ा प्यार करता है, क्यों? क्योंकि दूध देती है, वो दूध को प्यार करता है, गाय को नहीं। गाय यदि दूध ना दे तो कौन प्यार करेगा? पति अपने पत्नी को प्यार करता है क्योंकि उसे सेवाएं प्राप्त होता है। यदि पत्नी सेवा ना करे, उसके मनोनुकूल में ना रहे और सुंदरी ना हो तो घर से उसी दिन निकाल दे। स्त्री अपने पति को आदर करती है स्वार्थवश, किस लिए? यदि पति उसके अनुसार ना चले और उसकी रक्षा ना करे, उसके भोगों के उपकरणों को ना दे और जरा पागल सा हो जाए, अर्थ ना कमाए, रोगी हो जाए, तो छोड़ देगी। पश्चात देशों में तो रोज का ये धंधा है, जिसने 10 पति नहीं बदले और जिस स्त्री ने 5, 10, 15, 20 स्त्री नहीं बदल दिया, वो तो कोई मनुष्य नहीं। क्या ग्रीन बुक कोई है? हाँ, उसमें रिकॉर्ड में तुमका नाम ही, जो सबसे अधिक पति और स्त्री को बदले उसका उस नाम उसमें नाम हो जाए, उसके लिए आप रहते हैं। भारत की ये सब संस्कृतियां नहीं है, इस चीज को अच्छी तरह से समझना चाहिए। तो वो बतलाने लगे, आदमी आयरन चेस्ट में अपने आभूषणों को, सोना को रखता है, किस लिए? आयरन चेस्ट के प्यार के लिए नहीं, चूंकि हमारा ये चीज सुरक्षित रहेगा। बेटे को इसलिए प्यार करता है कि भविष्य में बूढ़ा हो जाने पर हमारी सेवा करेगा, इसलिए परस्पर। आदमी देखते हैं कि आम के बगीचे लगाते हैं, पेड़ लगाते हैं, कांटेदार क्यों नहीं लगाते? क्योंकि उससे सुंदर फल मिलते हैं। ये सब जगत की माया है, इसमें सुख शांति नहीं है। सुख शांति किसमें है? यदि यह उपलब्धि की आज मैं भगवान का अंश हूं, इनसे मैं सुखी नहीं रह सकता। भगवान का चिंतन करेगा, पूर्व जन्मों के कर्म अनुसार में खाने के लिए सभी चीजें मिली। हम भी तो खाने के लिए तो कुछ नहीं करते हैं, किंतु हमको आप लोगों से कम तो खाना नहीं मिलता, बल्कि और सब लोग 50 आदमी 1000 आदमी कहते हैं कि महाराज जी आप हमारे घर में आज भोजन कर लीजिए, क्या जरूरत है मुझे? इसी तरह से सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत है? लाखों विश्व उनके चरणों में डोलता है, क्यों? ऐसे ज्ञान से दीप्यमान है। इसलिए भारत के वेद, उपनिषद, शास्त्र माइथोलॉजी नहीं है, झूठ नहीं है, इसी में यथार्थता, सुख और शांति है। इस चीज को अच्छी तरह से समझा जाए। मूर्ति पूजा ढोंग नहीं है। यदि हम भगवान को पुष्प लेकर के इनके चरणों में देते हैं, क्या भगवान अंधा है जो देखेगा नहीं? निराकारवादियों का भगवान अंधा हो सकता है, किंतु हम लोगों का भगवान लाखों आंखें वाला है, लाखों मस्तिष्क वाला है, लाखों हाथ पैर वाला है। गिरिराज जी के लाखों हाथ हैं, वो अपने लाखों हाथों से लोगों को बांट रहे हैं। आज लाखों जनता वहां पर जाती है, किस लिए? उनकी सारी आकांक्षाएं पूर्ण हो जाती हैं काम में। इसलिए पत्थर के टुकड़े गिरिराज जी नहीं है, गंगा जी केवल पानी नहीं है साधारण। एक समय गंगा जी में बाढ़ आई और उसके किनारे एक सांप रहता था, उसका बिल माने गड्ढा एकदम जल के बराबर हो गया, तो उसमें पानी जाने लगा। सोचा ये पानी भर जाएगा तो हम मर जाएंगे। तो वहां से थोड़ा सा निकल रहा था, इतने में गरुड़ जी उतर करके देख रहे थे। गरुड़ जी ने अपने पंजे से उसको पकड़ लिया और पंजे से उड़ने से ही उसकी पूंछ सांप की गंगा नदी में पानी में टच कर गया, छू गया। थोड़े देर में देखा क्या, वो सांप तो का शरीर तो उसके पंजे में रहा, किंतु उसमें से दिव्य मूर्ति निकल करके चतुर्भुज मूर्ति धारण करके परम दिव्य रूप हुआ और गरुड़ के पीठ पर बैठ गया और गरुड़ को ले जाना पड़ा बैकुंठ में उसको। इसलिए गंगा नदी में, गंगा नदी नहीं है वहां का पानी, पानी नहीं है, अमृत से भी बढ़ करके है। मरने के समय में यदि उसका स्पर्श कहीं हो गया तो एकदम सदगति उसकी हो जाएगी। इसलिए ये सब बेकार की चीजें नहीं है। पाश्चात्य देशों के बड़े बड़े साइंटिस्टों ने परीक्षा की गंगा के पानी में क्या चीज है जो बरसों रख दो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, और सब जेलों में जितना भी जैसा रखो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। क्यों? तुलसी को हमारे यहां महारानी बतलाया जाता है, विष्णु की पत्नी। इसके पत्ते में क्या चीज है जो आज कैंसर में भी इसका प्रयोग हो रहा है, समस्त औषधियों की यह दवा एक है। केवल औषधि नहीं, इसका सेवन करने से चित्त निर्मल हो जाता है, बुराइयां अपने आप दूर हो जाती हैं, और स्पेशल रूप में क्या होता है, भगवान के चरण में भक्ति प्रेम हो जाता है। इसलिए ये तुलसी को भगवत भक्ति कहा गया, देने वाली बदला गया, हमारे चित्त को संशोधन करने वाले। आज विश्व में कहीं कोई कारखाना स्कूल कॉलेज नहीं है जहां पर कि दुष्टों का चित्त निर्मल कर दिया जाए, वहां पर और लोगों का चित्त दुष्ट हो जाता है, खराब हो जाता है। इसलिए भारत की ये सब चीजें परिपूर्ण रूप से सत्य और विज्ञान के ऊपर में प्रतिष्ठित है। ब्रह्मा भगवान के परम भक्त है। ये जो ब्रह्मांड है इसका तो ये थूल रूप है, उनके द्वारा सृजन किया गया है, उन्होंने बनाया है। एक बार कृष्ण भजनंदन श्याम सुंदर छोटी सी उम्र में गैया चराते चराते चले, हजारों सखा उनके साथ में थे, लाखों गैया थी जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हम, उनको लेकर के एक वन से दूसरे वन में चले जा रहे हैं, तरह तरह के बच्चों जैसे खेल खेल रहे हैं। इतने में एक बड़ा भारी अजगर सांप मीलो लंबा और जिसका मुख आकाश तक छू रहा था, एक नीचे एक ऊपर, कृष्ण को निगलने के लिए तैयार था। इसका नाम है अघासुर। अब उन्होंने क्या, पाप, जितने प्रकार के पाप हैं उन सब पापों का करने वाला महादुराचारी कपटी धूर्त, लोगों को अकारण ही तंग करना असुरों का कार्य है। कंस का ये मित्र कंस के परामर्श से कृष्ण को मारने के लिए आया। कृष्ण के सखा लोग ग्वाल बाल और उनके जो बछड़े थे आगे आगे चल रहे थे, कृष्ण आज कुछ पीछे हैं। बछड़ों ने देखा और गोपाल बालकों ने देखा, भाई ये क्या है, ये तो बड़ा भारी पर्वत है, सांप सा इसका मुख है, आज इसके भीतर चल करके देखेंगे इसे इस कंदरे के अंदर में क्या चीज है। लोग आगे बढ़े, उसने कालीन जैसी लाल अपनी जीभ को बाहर कर रखा था, सड़े मुर्दे के गंध उसके पेट से आ रही थी। तभी बच्चों ने कौतूहल बस ये क्या चीज है कि उरिया सिटी में आगे बढ़े। थोड़ी देर के बाद में ये उसके मुख में प्रवेश कर गए, बछड़े जितने थे और सखा लोग। वो सोच रहा था जब कृष्ण आए तो कृष्ण के साथ में इनको अपने पेट में ले जाऊंगा। इतने में कृष्ण ने देखा, अरे ठहरो ठहरो, किंतु कौन सुनता है, वो लोग भीतर चले गए। कृष्ण देखा जैसे ये लोग तो भीतर चले गए थे, ये भी उसका खुला हुआ अभी तक मुख था उसके अंदर में, ये भी प्रवेश की। प्रवेश करते ही अपने जबड़ों को उसने बंद कर दिया, जबड़े के बंद करने के बाद में उसके बीच से जितने ग्वाल बाल और बछड़े थे वो तो सब साथ ही साथ में मर गए, मूर्छित हो गए। और कृष्ण ने क्या किया? कृष्ण को तो मार नहीं सकता कोई, वो तो स्वयं भगवान है, विष से भी उनका कुछ नहीं होने का। उन्होंने अपने शरीर को एकदम लाल आग के समान गर्म बना दिया, उसका सारा मुख जलने लगा और उसके नाक के छिद्र में और गले में अटक गए, श्वास बाहर भीतर कहीं नहीं आए, आंखें निकल गई और उसका प्राण निकल गया यहां से फाड़कर। उसकी आत्मा आकाश में घूम रही थी, देखा ब्रह्मा जी देख रहे हैं इस लीला को। और जब कृष्ण जाही उसकी आत्मा निकल गई तो उसके मुख से समस्त बच्चों की तरफ में देखा, अपने दृष्टि के अमृत से सबको उजिला दिया और सबको लेकर के बाहर आए। जो ही बाहर आए तब तक उसके शरीर से जो आत्मा निकली थी वो आकाश में ज्योति के रूप में घूम रही थी। जो ही कृष्ण आए बाहर में तभी कृष्ण के चरणों के अंदर में प्रवेश कर गए। ब्रह्मा जी ने देखो जी इसका कितना भाग्य, भगवान का विरोध करने पर भी इनके चरणों में मुक्ति को पा लिया, उनके चरणों में मिल गया, जो बड़े बड़े कोटि कोटि लाखों वर्षों तक सिद्ध जो करने पर भी भगवान के चरणों में नहीं मिल पाते, बड़े बड़े योगियों के लिए परम दुर्लभ गति। ऐसा सोच करके उन्होंने कहा कि इस भगवान की मैं कुछ लीला देखना चाहता हूं। मनी मन में शंका, उन्होंने भगवान की कुछ परीक्षा करनी चाहिए। कैसे परीक्षा करें? उनके दिमाग में एक बात आई, मैं परीक्षा करूं ये नंद का लाला है, लड़का गोप केवल है, या ये लोग कहते हैं कि ये ब्रह्म है भगवान है, जरा परीक्षा तो कर लूं। जैसे आज के लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते, माना उसका उत्तर समझने के लिए देने के लिए ऐसी वो परिकल्पना करने लगे। उन्होंने कहा कि आज जब ये भोजन करने बैठेगा बच्चों के साथ में, इसके बछड़ों को और सखाओं को सबको हर ले करके पहाड़ की कंदरा में बंद कर दूंगा और देखते कि ये क्या करता है। बात ऐसी हुई कि कुछ दिनों पूर्व, कुछ दिन पहले कृष्ण ने देखा ब्रज की जितनी भी ग्वालिने हैं वो चाहती हैं कि कृष्ण हमारा पुत्र होता और हमारे स्तन कष्ट से दूध पाता और हम उनका पालन लालन करते। जितनी भी गैया थी अपने बछड़े से अधिक कृष्ण को मानती थी और वो चाहती जी कृष्ण हमारा बछड़ा हो जाता, हमारा दूध पान करता। ब्रज की जितनी लड़कियां थी वो सोचती थी यदि कोई पति मिले, यदि हमारा विवाह हो तो कृष्ण से ही विवाह हो, ऐसा ही हमको पति मिले। तरह तरह की लोगों की भावना कृष्ण के प्रति, उन्होंने एक साथ सबकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए क्या किया, ब्रह्मा को आकर्षण करके योग माया के प्रभाव से उनके बुद्धि में यह दिया जो बछड़ों को चुरा लो और सखाओं को चुरा लो, ये ब्रह्मा की अपने मन की उपज नहीं थी बल्कि योग माया के द्वारा भगवान ने उनके अंदर में ये बात प्रवेश करा दी। ब्रह्मा ने सोचा कि मैं खुद ही समझ रहा। कभी कभी ऐसा होता है भगवान जब कृपा करते हैं तो हमारी बुद्धि में ऐसी प्रेरणा देते हैं, ददामि बुद्धि योगम तं येन माम उपयन्ति ते, गीता में भी लिखा है परिषद में, जब पर जब मैं कृपा करता हूं तो उसकी बुद्धि में अच्छी प्रेरणा देता हूं, अच्छे काम को कर सकता है। यदि अच्छी प्रेरणा मिले कोई समझना ये भगवान की प्रेरणा है, और बुरा कोई मतलब तो सोचना जी हमारे मस्तिष्क की ये बात है। कभी कभी हम कोई बुरा काम करते हैं तो भगवान प्रेरणा देते हैं इसे मत करो, जो लोग उसको नहीं मानते हैं वो विपत्ति में पड़ते हैं, उनको दुख भोगना पड़ता है। ये भक्ति भी भगवान की बिना कृपा से नहीं होगी, संतों का मिलना भी भगवान की कृपा से नहीं होगा, बिनु संत भगवानों की कृपा से, संतों की कृपा से भगवान नहीं मिलते, या भगवान की कृपा से संत नहीं मिलते। इस तरह से सब लिखा, इसलिए इस प्रेरणा को भगवान ने उनके अंदर में प्रेरित और अपनी लीला को भी दिखलाना चाहा, इसलिए कृष्ण ने क्या किया जे ब्रह्मा के हृदय में ऐसी प्रेरणा दी। ब्रह्मा जी ने चट देखा जी ये कृष्ण गोपालकों के साथ में खेलते हुए खा रहा है, बीच में बैठा है, वन राउंड सब सखा उनको घेर करके बैठे, दो तीन चार पांच सात उनके अंदर में आगे पीछे साइड में सब गोपालक बैठे, लाखों बालक जो बहुत दूर पीछे थे वो भी देख रहे हैं कृष्ण के सामने, जो साइड में है वो भी देख रहे हैं कृष्ण के पास आमने सामने। सभी ने ऐसा अनुभव किया है जो कृष्ण से मैं बातचीत कर रहा हूं उनको खिला रहा हूं वो हमको खिला रहे हैं, ये भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति है जो नहीं होने का अवसर भी कर, ऐसा संभव मनुष्य के लिए नहीं हो सकता। गिरिराज को उठा लेना किसी साधारण मनुष्य की बात नहीं है, विष पान करके भी जीवित रहना ये मनुष्य की बात नहीं है, आग जल रही उसको खा लेना ये साधारण मनुष्य की बात नहीं है। कृष्ण ये सब चीजें की है, एक ही साथ में हजारों रूप धारण कर लिए हैं, ये सब चीजें दिखलाई। इसलिए यहां पर जब वो खा रहे थे तो इतने में बछड़े चढ़ते चढ़ते चढ़े कुछ दूर चले गए तो इन्होंने बछड़ों को पकड़ करके कंदरे में पहाड़ की गुफा में बंद कर दिया। कृष्ण का जी बछड़े किधर गए, ग्वाल बाल बोल जी बछड़े किधर गए। कृष्ण ने कहा जी तुम लोग बैठ करके खाओ, मैं अभी तुरंत खोद करके लेता हूं। कृष्ण बंसी लेते हुए एक हाथ में कवल, हाथ में दधी और अन्न का ग्रास लेकर के और बंसी को कहां जठत पटर इधर में लगा दिया, ऊपर में मोर मुकुट है, बड़े चिंतित होकर के बछड़ों के लिए मुख सूख रहा है कृष्ण का मानो, और बछड़ों को खोजने के लिए चल दिए। ब्रह्मा जी ने देखा जी ये कृष्ण तो इधर गया, बस सखाओं को भी लेकर के दूसरे कंदरा में लेकर के बंद कर। कृष्ण मुग्ध बालक की भांति साधारण की भांति इधर उधर खोज रहे हैं। कृष्ण ने हठात चिंतन किया, अरे ये तो ब्रह्मा का काम है, ठीक मैंने तो ऐसा ही चाहा था। बस साथ ही साथ समझ गए और जितने बछड़े थे जितना जिनका जैसा रंग था वैसा ही एकदम बछड़े बनकर के उनका रंग उनकी बोली उनका स्वभाव सब कुछ वैसा ही कर लिया। जितने सखा थे गोपाल बालक उनको भी उनका भी रूप धारण कर लिया, उनकी लठिया बन गए, उनकी कंबली बन गए, उनकी बंसी बन गए, उनके बेणू बन गए, सब कुछ जिस स्वर से वो बातचीत करते थे माता के पास में जाते थे ठीक उसी प्रकार से दैनंदिन का कार्य उसी प्रकार से कृष्ण एक वर्ष तक करते रहे। इधर में ब्रह्मा जी ऐसा दोनों को बंद करके आकाश मार्ग से अपने ब्रह्मलोक में गए, वहां पर प्रहरी ने उनको जाना बंद करे, आप कौन है किस लिए यहां है, अरे मैं चतुर्मुख ब्रह्मा जी हूं, आप चतुर्मुख ब्रह्मा तो हमारे यहां पर बैठे हुए हैं, वो तो काम कार यहां का सब काम कर रहे हैं। उन्होंने देखा तो भाई ये दूसरा कौन आ गया, कृष्ण ही स्वयं वहां पर पधार करके और द्वारपालों से कहा उसको यहां से निकाल दो, यहां मत देना। द्वारपालों ने कहा जैसे ये तो कोई ठग आदमी है रूप बना करके आए, तुम यहां से चले जाओ खैर जाओ। उन्होंने कहा भाई ये तो भगवान ही शायद वहां पर हमारे स्थल पर बैठ करके और हमको शिक्षा देने के लिए ऐसा कर रहे हैं, बस वहीं से लौटे लौटे। इतने में एक वर्ष पूरा हो गया। इतने में क्या होता है जब कृष्ण अपने सखाओं को घर लेकर के जाते हैं, पहले उनकी माताएं अपने बेटों से कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, किंतु अब तो कृष्ण जो है और उनके सखा दोनों ही कृष्ण बने हुए हैं, अब मैया ऐसा नहीं पहले जैसा नहीं करती, अब दोनों को बराबर प्रेम करने लगी। पहले गोचारण करके कृष्ण लौटने के समय कृष्ण को ही अपनी गोदी में ले लेती थी, आजकल वैसा नहीं अपने बेटों को ही गोद में लेती है, और गायें पहले अपने बछड़े से भी कृष्ण को अधिक प्यार करती थी, किंतु आजकल उल्टा उनका हो गया, अपने नए बछड़ों को जो कृष्ण ही बने हैं उनको अधिक प्यार करने लगी जो पुराने बछड़े थे, और नए बछड़ों को प्यार नहीं करते क्योंकि नए पुराने बछड़े तो चल रहे थे, ब्रह्मा जी हर ले गए थे कृष्ण बछड़े बन गए हैं, इसलिए पुराने बछड़े को अब वे अधिक प्यार करती हैं। और एक बात हुई उसी समय गर्गाचार्य ने घोषणा की
ये वर्ष बहुत ही शुभ है, इसलिए गोपाल को गोपों को चाहिए कि अपनी कन्याओं की शादी इस वर्ष जरूर कर दें। जो यहां तक कि पेट में भी जो है वो परस्पर मिल करके ये करें, यदि ये लड़की हुई और उसका लड़का हुआ तो हम भी आज ही उनकी शादी कर रहे हैं, ऐसा भी कर दो। तो उसी वर्ष में सारी गोप कन्याओं की शादी हुई, तो किससे शादी हुई? वो जितने सखा थे वो कौन थे? कृष्ण बने हुए हैं, इसलिए सबकी शादी कृष्ण से ही हो गई, इसलिए सब कृष्ण की ही पत्नी है, क्योंकि उन्हीं की शक्ति है। लोग इस चीज को नहीं समझ सके, लीला इस प्रकार से कर रहे हैं। और क्या हुआ, एक बार बलदेव जी एक दिन कृष्ण के साथ में मधुबन में गैया चरा रहे थे, अंतिम दिन। उस समय गोवर्धन में बड़ी बड़ी गायें चर रही थी और बछड़े चर रहे थे मधुबन में, वृंदावन के पास मधुबन है और वहां से थोड़ी दूर पर गिरिराज गोवर्धन है। गिरिराज के ऊपर में बड़े बड़े बूढ़े वहां पर गैयों को चरा रहे थे बड़ी बड़ी, और बछड़े कहां चर रहे हैं मधुबन में, इनको कृष्ण और गोप सखा छोटे छोटे बच्चे चरा रहे। गैयों ने दूर से ऊपर से अपने बछड़ों को देखा, पुराने को, नए बछड़ों को छोड़ दिया, अब बड़ी तेजी से दौड़ती हुई अपने पुराने बछड़ों को प्यार करने के लिए और दूध देने के लिए दौड़ी। जितने बूढ़े या प्रौढ़ गोप थे लठियों से उन्हें रोकने की चेष्टा की, लठियां चलाई, गायों को मारा भी, किंतु कोई भी गाय नहीं रुकी। सभी जंगलों से होकर के नाले नदियों को फांती हुई, कांटों को भी पार करती हुई, किसी प्रकार सीधे एकदम अपने बछड़ों को पेपर में जाकर पुराने बछड़ों को दूध देना आरंभ कर दिया, उनको चाटना, बड़े प्यार से चाटना आरंभ किया। नए बछड़े वहां पर भी रो रहे हैं, डकार रहे हैं, कहां गोवर्धन में, उनको नहीं दिया, चले आई है। ये लोग जो गोप थे ये बड़े बिगड़े, ये बच्चे बड़े नटखट हैं, जोर से वेणु बजाया, बंसी बजाई और सिंगा बजाया, इसलिए गायें भड़क करके वहां पर दौड़ करके चली गईं। अभी चल करके उनको हम दो चार थप्पड़ लगाएंगे, इसलिए बड़े बिगड़े हुए और गैयों के पीछे दौड़ते हुए और भी क्रोधित हो गए, क्योंकि गैयों को लौटा नहीं सके, इसलिए बच्चों पर बड़े क्रोध से आए। और जब यहां पर आए तो अपने बच्चों को देख करके इतना स्नेह उमड़ा, जो क्रोध कहां भूल गए और उनको बड़े प्रेम के साथ में सहलाने लगे। बलदेव जी ने कहा, जी ये बात क्यों, ये पुराने बछड़ों को दूध दे रही है, नए बछड़ों को छोड़ दिया, और ये गोप लोग और ये गोपियां ना अपने पुराने बच्चों को स्नेह कर रही हैं और नए बच्चों को उतना स्नेह नहीं करती, क्यों? उन्होंने विचार किया, देखा, अरे ये और कोई नहीं कृष्ण। कृष्ण की तरफ में हंस करके बोले, अरे भैया कृष्ण है, कहना एक यशोदा मैया के दूध पीने से तेरा पेट नहीं भर रहा, तो लाखों घरों में तू चोरी करता है, उसे भी पेट नहीं भरा, अब लाखों गोपियों के तू बेटा होकर के उनका दूध पीता है और तभी तेरा पेट नहीं भरा, लाखों गैया के बछड़े होकर के तू दूध पी रहा है तभी तेरा पेट नहीं भर रहा। कृष्ण सुन करके थोड़े से मुस्कुरा दिया, ओ देवताओं की माया हमें मोहित नहीं कर सकती, बलदेव जी सोच रहे हैं, किसी भूत पिशाच की, देवता की, माया की वृत्ति हमें नहीं भुला सकती, ये तो कृष्ण की जोग माया है जो हमको भी बुला रखा था एक बरस तक। अब वो समझे, बलदेव जी भी नहीं समझे, कृष्ण के ही ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण से अभिन्न है, सब कुछ जानने वाले हैं, किंतु ये भी उनकी लीला को नहीं समझ सकते, तो हम छोटी सी मस्तिष्क वाले क्या समझेंगे? ब्रह्मा जी चार मस्तिष्क वाले वो भी नहीं समझ सके, और हम समझते हैं कि कृष्ण को समझ लें कि भगवान है कि नहीं, इतना सस्ता नहीं है। इसलिए हमारे शास्त्रों की बात माननी चाहिए, क्यों मानना चाहिए, इसका एक उदाहरण देता। एक समय हम गुरु जी के साथ में ट्रेन से कहीं जा रहे थे, उसमें टिकट इंस्पेक्टर आया और वो टिकट चेक कर रहा था, वो कुछ नास्तिक टाइप का था। गुरुजी को बोला, अरे भगवान कहीं दिखते भी हैं जो उनको मानते हो, भगवान को मानने की जरूरत क्या है? कृष्ण भगवान था, इसको मानने की जरूरत क्या? कृष्ण भगवान था, भगवान को तो किसी ने देखा नहीं, भगवान को मानने की जरूरत क्या है? तो गुरु जी ने बहुत सीधे से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया तुम जिस चीज को नहीं देखते हो उसको भी तो तुम मान लेते हो। तो कभी नहीं मानता, जिस चीज अपनी आंखों से नहीं देखा उसको मैं नहीं मानता। भाई झूठ मत बोलो, झूठ मत। तो मैं झूठ कर रहा? हाँ झूठ कर रहे। तो उन्होंने कहा, तुम्हारे पिताजी का नाम क्या है? उन्होंने कहा जानकी शर्मा। तुम कैसे ये सिद्ध कर सकते हो? प्रमाणित करो, तुमने देखा जैसे ये तुम्हारे पिता हैं? कैसे तुम कर रहे हो? तुमने मैया और पिता का मिलन देखा था, उससे तुम गर्भ धारण तुम्हारी मैया ने किया और तुम प्रकट हुआ, ये देखा? आ तो नहीं। तो तब क्यों उनको पिता और उनको माँ क्यों कहता है? आ तेरी यदि माँ ने या पिता ने झूठ बोल दिया, यदि किसी दूसरे से तुम पैदा हो गया हो और मां लज्जा के मारे कहती है ये नहीं तुम अपने पिता से पैदा, तो तुम प्रमाण करो, तुमने देखा? आ तो नहीं। तो क्या मानता है? अंत में उसकी बोली बंद हो गई, बगल झांकता हुआ वहां से निकल गया। इसलिए वेद शास्त्र हमारी माताएं हैं, हमारे पूर्व ऋषियों ने इसकी अनुभूति की, हमारे मंगल के लिए उन्होंने शास्त्रों में लिख दिया है। यदि हम न्यूटन की थ्योरी को पुस्तकों से देख देख करके, विज्ञान की पुस्तकों से, गणित की पुस्तकों से हम पढ़ सीख सकते हैं, तो क्या हम अपने वेदों शास्त्रों से नहीं पढ़ सकते? यदि कोई एक उदंड छात्र ये कहे अपने शिक्षक से, वो उसको ABCD पढ़ा रहा था, क ख ग घ पढ़ा रहा था और अ ई पढ़ा रहा, गुरुजी ये अ है आप प्रमाण करके बतलाइए हमको, हम कहेंगे ये वो क को मैं अ कहता, गुरुजी की बात नहीं मान रहा था, तो पढ़ना सीखेगा? एक्सियम होते हैं, एस्टेब्लिश ट्रूथ होते हैं, उसको नहीं जानने पर भी मान लेना पड़ता है शिक्षकों के कहने पर, नहीं तो वो एक अक्षर भी नहीं बढ़ सकता। कहेगा जी हमको ए बतलाओ, जी यही ए है, तो कभी पढ़ नहीं सकता, इसलिए उस पर विश्वास करना पड़ता है। यदि हम आज के पुस्तकों पर, साइंस इत्यादि के पुस्तकों पर विश्वास कर सकते हैं, तो क्या वजह है जो इनसे कोटि गुण श्रेष्ठ व्यास नारद इत्यादि के द्वारा अनुभव ट्रूथ को हम क्यों नहीं सत्य माने? हमारे पुराणों को, शास्त्रों को माता के समान क्यों नहीं सत्य माने? इसलिए इनको मान करके हमको चलना पड़ता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने अपन अनुभव को भागवत में लिखा, नौ मिटते अभ्र बपुषे तड़िदम्बराय गुंजा वतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन सृजी कबल त्रविशान वेणु लक्ष्मे पिदुपदे पशुपांग जाय करें। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर, जो मुग्ध बालकों की तरफ में हाथ में अन्न और दधि का ग्रास लेकर सुंदर मोर मुकुट फहरा रहा है, अधर पर मुरली विराजित है, लाखों सखा लोग कृष्ण की जय हो कृष्ण की जय हो करके चल रहे हैं, उनकी चरण में 18-19 प्रकार के चरण चिन्ह है, कलश है, भेंट धनुष है, कलश है और वज्र अंकुश इत्यादि सब चिन्ह है। हमारे शास्त्रकारों ने, अनुभवी लोगों ने ये सब का निर्णय किया है। कृष्ण की हाथ घुटनों से लंबी, हम लोगों का यही पता रह जाएगा। कैसे अद्भुत काम किए, कालिए सारे विष पानी को विष कर दिया और उसमें कूद पड़े और उसमें से निकाल कर पवित्र करके उसे बाहर फेंक दिया, यमुना का पानी निर्मल हो गया। साधारण मनुष्य की बात, एक आग में, जंगल में आग जल रही थी, चारों तरफ से बछड़े और ग्वाल बाल जल रहे थे, उन्होंने उनको पुकारा, साथ ही साथ आकर के कहा आंख बंद करो और सब चुल्लू में लेकर के सारी आग को पी गए, मनुष्य का काम है। तो कहो जे उनको बाण से मारा तो वो मर के क्यों है द्वारका में? अरे मरे नहीं रे बेटे, जरा इस चीज को समझो। एक मदारी था, मदारी समझते हैं जादूगर, जादूगर। एक दिन उसके राजभवन में वो एक जादूगर आया, अभी नौजवान, उसकी स्त्री भी बड़ी सुंदरी नौजवती थी और उसके दो बेटे, एक 9 वर्ष का एक 8 वर्ष का, वो भी बड़े सुंदर पुरुष थे। उन्होंने राजा से कहा आदेश दे तो मैं कुछ खेल दिखाऊं। अच्छा दिखलाओ। तो ढोलक अपने ले लिया और उसकी स्त्री को एक दो बांस ऐसे खड़े कर उस पर रस्सी टांग दी और वो झट 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 कर एक कलश 2, 3, 4 पानी से भरे हुए कलशों को ले लिया और एक छोटा सा बांस लेकर के झट झट चढ़ गई ऊपर और उसी के ऊपर में नृत्य करने लगी, बांस हाथों में लेकर के उससे बैलेंस साथ करके, पैर कहीं धर धर न गिरे। लोग देख करके बड़े आनंदित हुए। रानी ने अपने गले का हार उसको दे दिया, उस नटी को जो नृत्य कर रही थी, सोने का हार 9 लाख रुपयों का। वो दोनों बच्चे निकाल करके अपने बच्चों को देने लगी, बच्चे लड़ने लगे, मैं लूंगा मैं लूंगा, दोनों खींचने लगे। जब खींच नहीं सके दोनों बराबर बलवान, तो दोनों ने एक साथ तलवार निकाली और तलवार निकाल कर एक दूसरे पर एक ही साथ चला दिया, दोनों के गले उतर करके गिर पड़े। इतने में जो नटी थी वो बोली अरे हाय हाय हमारा ये बेटा मर गया, इसलिए उसने तलवार उठाई अपना गला काट दिया। और उसका पति आया, यारी हमारे सभी परिवार के मर गए, उसने भी गला वो तलवार उठाई अपना गला काट लिया, ये चारों मर गए। राजा रानी और सभा के लोग सभी बड़े दुखी हो गए। हम लोग खेल देख रहे थे और ये चारों मर गए, उनकी लाश को वहां से हटा दिया, बड़े दुखी हो। रात में नींद नहीं आई, दूसरे दिन उनके पास में पत्र आया जी महाराज आपने हमारा जो पहला खेल देखा उसके लिए तो 9 लाख का हार दिया, किंतु दूसरा जो हम लोग खेल दिखलाए उसका कोई भी पुरस्कार नहीं मिला, हम लोग कोई भी मरे नहीं, ये तो हमारा जादू का एक खेल था। हम यदि हो तो हमारा पास ही घर है, आप करके आप हमें देख सकते हैं, कल 10 बजे के करीब में आप आइए। राजा रानी बड़े आश्चर्यचकित हो गए, अपने रथ पर चढ़ करके उसके घर गए, देखा वो युवती और युवक जो नट थे हंसते हुए मुस्कुराते हुए सोने फूलों के हारों का गजरा लेकर के राजा रानी को पहनाया और लड़के उनके दोनों हाथों की अंगुलियों को पकड़ करके खड़े थे। देखिए हम लोग मरे नहीं तो वो खेल था, हमने भी ऐसा खेल इंडिया में देखा, गला काट लिया, बक्से में बंद कर दिया और कहा जब बेटे आ जाओ तो वो दोनों आ गए, मरे नहीं, ये तो बाएं हाथ का खेल है। और जो विश्व ब्रह्मांड का जो जादूगर का जादूगर का जादूगर भगवान सर्वशक्तिमान है, उनके लिए ये सब चीजें दिखलाना क्या भारी बात है। जो द्रोण और कर्ण के बाणों से, भीष्म पितामह के का बाणों से नहीं मरे, काली हद में कूद करके विष से नहीं मरे, जिन्होंने आग खा लिया वो नहीं मरे, चंद्रलोक जमलोक कहां कहां घूम आए और किसी के मारने से विष खाने से मर जाएंगे, यह बात गलत। उनका जाने का समय हुआ, ऐसी लीला दिखला करके और झट चले। द्वापर वहां पर न कोई लड़ाई हुई न कुछ हुआ, ये तो एक जादू थी कृष्ण की, साधारण शक्ति का परिचय था, इसलिए कृष्ण को कोई मन नहीं मार सकता। यदि मर जाते तो हम उनकी उपासना आज क्यों करते हैं, यह गलत बात। इसलिए कृष्ण मर गए किसी ने मार दिया, यह गलत बात। इसलिए अपने हिंदू धर्म सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास रखेंगे, भगवान शक्तिमान है, लाखों बार यहां आए वैसी कृष्ण रूप में, राम उसी रूप में आए, इसलिए उसको अवतार कहते हैं। इसलिए अपने सनातन धर्म से कभी विचलित मत होंगे, भगवान का नाम करेंगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम, क्या नाम करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम, पूर्ण उत्साह और विश्वास के साथ में करेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, भगवान का अर्चन वंदन करेंगे, ये झूठी बात नहीं है। हम कुछ भी भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान देख लेता है। ये भगवान भी विग्रह, ये चलते हैं फिरते हैं। वृंदावन में मदन मोहन का मूर्ति है, आजकल जयपुर में वो चलते हैं। उन्होंने चला था, कोई साक्षी देने के लिए हजारों मील चले गए। उनकी मैया ने नाक में छेद किया था, आज भी देख सकते हैं। रानी की इच्छा हुई आज से 500 वर्ष पहले, ये मदन मोहन जी को हम अपने वो नाक का जो बेसर होता है मैं पहना दे, किंतु छेद तो होगा नहीं। कृष्ण ने उनको स्वप्न दिया, ये मैया हमारी नाक छेदवा दी थी, तुम देखो तो देखा दे नाक में छेद है, बस झट उसको आप संस्कार करके शुद्ध करके और उनके नाक में पहना। बहुत सी अजीब अजीब बातें हैं, कितना आपको ब्रज की बतलाऊं। कभी कोई गोवर्धन की परिक्रमा करता है तो कभी कभी छोटा बालक और लालटेन लेकर के उसकी मदद करके उसको गोवर्धन की परिक्रमा कर देता है, करा देता है, उसकी कोई भी वांछा उसे पूर्ण कर देता है। इसलिए सब बातें असत्य नहीं है। यदि कभी परीक्षा करने की हो तो जरा परीक्षा कर लेंगे, अभी कुछ दिन हरि नाम कीजिए, आपका चित्त बदल जाता है कि नहीं। इसलिए मेरा अनुरोध है कि भारत के सनातन धर्म पर यदि कुछ भी आक्षेप हो तो उसका उत्तर देने की चेष्टा करेंगे, नहीं होगा तो हम लोगों को बुलाएंगे, हम चैलेंज देकर उनसे शास्त्र प्राप्त करने के लिए हम लोग तैयार हैं, उनको हम प्रमाणित कर देंगे ये हमारे शास्त्र सत्य हैं, हमारा नाम संकीर्तन सत्य है, कृष्ण का मूर्ति सत्य है, वेद सत्य है, पुराण सत्य है। आज यही कह करके अपना वक्तव्य समाप्त में कर रहा हूं। कल हम लोग दो बार के करीब यहां से हम यात्रा करें, यहाँ के कुछ लोगों का अनुरोध है जब फिर हम लोग आए 10-12 दिन के लिए, भागवत की पूरी कथा हो या और सब उपदेश हो, हम लोग भी देखेंगे। यदि हम इस मिनी भारत में पुनः आ गए तो हम भी बड़े प्रसन्न होंगे, उसमें विशेष रूप से इस सब बातों की आलोचना हम करने की चेष्टा करेंगे। आज यही पर्व अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। गौर प्रेमा, आप लोगों के हम आभारी हैं जो आप लोग यहाँ आकर के सुना, और आप लोगों को मेरे तरफ से पुनः पुनः धन्यवाद है।
मेरे लाला जी को लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला, मेरे लाला जी को लाला सभी लोग बोलिए, मेरी मटकी में मार गयो बेला, जी को लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला, जुटे लाला मेरी मटकी में मार गयो बेला, मेरी मटकी में बोलिए बेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला रे बेला रे बेला रे बेला रे, मटकी में मार गयो बेला, जुटे लाला अलबेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला, जुटे लाला कभी गौवन के संग कभी दशरन के संग, कभी गौवन के संग कभी गौवन के संग कभी दशरन के संग, कभी आओ के संग मेरा खेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला, कभी आओ के संग मेरा, मेरी मटकी में मार गयो बेला, मेरी मटकी में मार गयो बेला। मंगल के संग मेरा के
Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare.
राम हरे राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हरे हरे
हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे
हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे
हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे
हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे
Oh,
हरि बोल 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 हरि बोल
संकेत गौरव करेंगे